नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घाना की संसद को संबोधित करेंगे। श्री मोदी घाना की राजधानी एक्रा में भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। घाना यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन श्री मोदी वहां इंक्रुमा संग्रहालय भी जाएंगे। ये वह स्थल है जहां क्वामे इंक्रुमा ने घाना की स्वाधीनता की घोषणा की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रॉमनी महामा ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और घाना में भारतीय निवेश बढ़ने का स्वागत किया। साथ ही रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत की। बाद में घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज रात त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। वे वहां के राष्ट्रपति क्रिस्टीने कार्ला कांग्लू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। इस बीच त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत के उच्चायुक्त डॉ प्रदीप राज पुरोहित ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों की 180वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और प्रधानमंत्री की ये यात्रा प्रवासी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हरियाणा के मानेसर में शुरू हुआ। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगरीय निकाय लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और इसका सीधा संवाद जनता से होता है। संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ते शहरीकरण में स्थानीय निकायों की भूमिका पर चर्चा करना है। नई दिल्ली में आज ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी BES एक्सपो 2025 से संबंधित 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है AI के माध्यम से मीडिया परिदृश्य में परिवर्तन, सृजन, सहयोग और मुद्रीकरण। 3 दिन के इस सम्मेलन में जाने माने प्रसारणकर्ता, मीडिया क्षेत्र के पेशेवर और देश विदेश के वक्ता व्याख्यान देंगे और अत्याधुनिक प्रसारण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में फायर एनओसी नवीनीकरण नियमों में बदलाव किया है। फायर एनओसी के लिए अब भवन मालिकों को करीब 2 गुनी राशि का भुगतान करना होगा। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के बाद प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में इसके लिए नवीनीकरण शुल्क को बढ़ाकर 20,000, नगर पालिका क्षेत्र में 15,000 और नगर परिषद क्षेत्र में 10,000 रूपये किया गया है। इससे पहले 2023 में फायर एनओसी नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फायर एनओसी की समय अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल किया है। अजमेर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित चाची आवास अटल आवास योजना का शुभारंभ कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। सभी को आवास मुहैया कराने के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई इस आवासीय योजना में कुल 191 भूखंडों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। इसके लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समूचे प्रदेश पर मॉनसून के बादल मेहरबान बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश जगहों पर जबकि पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। हाड़ौती क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार सर्वाधिक बारिश चित्तौड़गढ़ के बस्सी में 32 सेंटीमीटर मापी गई। इस बीच राज्य के अधिकांश भागों में आज भी बारिश का दौर बना रहा। पाली जिला मुख्यालय में हुई तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। जालौर में भी सुबह से रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। वहां सर्वाधिक 6 सेंटीमीटर बारिश रानीवाड़ा में दर्ज की गई। बालोतरा और आसपास के इलाकों में भी आज अच्छी बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।